के बाद उन्हें परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की 1994 वो वही अपने वैष्णव भजन गाने के लिए और उनके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से जो एक्सप्लेनेशन देते हैं इसके बहुत मशहूर है इसका इसके विशेषकर उनकी मत प्रेमों में संबंध है भक्तों के साथ जहाँ पे भी जाते हैं भक्तों का हृदय गीत हैं 2000 प्रोविजन भक्ति शास्त्री कोर्स के MISC थे और वहाँ पे उन्होंने MISC में उसके बाद कोर्सेज भी कंडक्ट किए भक्तों के लिए 2001 में उनको कलकत्ता का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा करने का मौका मिला जो उन्होंने 2004 में किया उस सेवा उस समय वो टेम्पल मैनेजमेंट में और फूल कृषि में कलकत्ता में अग्रसर थे एग्जाम के लिए रंगनारायणपुर विशेष रंगनारायणपुर संन्यास वेटिंग लिस्ट में है बहुत जल्दी में संन्यास होने वाला है स्वामी जी भी और से करंटली असाइन अभी वो पीजी करते हैं उज्जैन इंदौर बांग्लादेश में 2006 में जीबीसी ने उन्हें इस्कॉन ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड मिला था फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ओपनिंग वैदिक टेम्पल उज्जैन में एक बहुत सुंदर भव्य वैदिक मंदिर का स्थापना करने के लिए तो जी इंग्लिश हिंदी और बंगाली में प्रचार करते हैं विशेषकर मध्य प्रदेश में और उज्जैन इंदौर और बांग्लादेश में अभी तो जी इसका उज्जैन श्री राधा मदन मोहन मंदिर के प्रेसिडेंट भी आइए रंगनारायणपुर को हम पारंपरिक ढंग से श्री राधा बिहारी मंदिर में स्वागत करेंगे एक बार करें बोल
अग्नि सीनियर होगा तो सर सीनियर मतलब समाज पर सीनियर तकलीफ वाला काम है कर रहे हैं उन्हें मैं आता है अपनी सीखने के लिए क्लास अटेंड करने के लिए मेरा दिन रात रहा है यहाँ क्लास में बैठे कर सेवा करने के लिए सीखने का बजट के अंदर कोई कोई कितना होगा पाल है इससे और नहीं आ रहा परिकर्षण में फिर भी वैष्णव का आदेश पालन सचिवालय जीवन का उद्देश्य है तो जब भक्त में तो मैं बोलने का कुछ है तो बोलना ठीक है बोलना चाहिए तो भजन गाना है तो आपका तत्व बढ़ने की बात करें भजन गाना है कह सकते श्रीमद भागवत कम सोची शुद्ध भक्ति योग की महिमा अत विभूति मम माया विनाशा ऐश्वर्यमष्टांग मनो प्रवृत्तम भगवती वस्ति हयंति भद्रा अश्नुवाते तु लोके परस्मेते स्नुवाते तु लोके बात है ना कि बात अत विभूति मम माया विनस्ता ऐश्वर्यमष्टांग मनो प्रवृत्तम भगवती वस्ति हयंति भद्रा
Yeah. महालोक जनलोक तपलोक
अंतत ब्रह्मा द्वारा निर्मित सत्यलोक सत्यलोक पहुंच जाए तो वह भी भौतिक सुख के लिए महत्व संभावना है। तो ये अध्याय में भगवान कपिल देव उनका माता को उपदेश दे रहे हैं। भगवत भक्ति भगवान कितना महत्वपूर्ण है, भक्त को भक्त इस लक्ष्य का तो कोई विभूति है अर्थ विभूति ममो कहा। ये भौतिक जगत का कोई विभूति सर्वलोक से शुरू करके सत्यलोक यह तो अष्ट सिद्धि और भगवत धाम भी नहीं जाना चाहते हैं। अष्ट सिद्धि सर्वलोक पूर्वक तात्पर्य पहले कहा है ये माया है, इसको चाहना माया द्वारा प्रवृत्त विभूति के कोई प्रकार कहते हैं। तो पूर्व तात्पर्य ने कहा ये जो सर्वलोक का विभूति अष्ट सिद्धि है ये है माया द्वारा प्रवृत्त विभूति है। हाँ हाँ वो माया का विभूति भोगना चाहते हैं। सनातन धर्मेश्वर के जितना अलग अलग धर्म है वह इतना विभूति तक पहुंचा रहे चल गलो अलग अलग इतना तो भगवत धर्म तक इतना कंसेप्शन किसी का नहीं। अलग अलग धर्मों में ये पुण्य कर्म कहाँ कभी स्वर्ग में जाके नसीब भोग कर सकते, तो भागवत में इसको कहते हैं चीटिंग रिलीजन। इस तरह पृथ्वी के धर्म नामे जब तो किसी चले भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले छलता धोखा। तो पृथ्वी को धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है भागवत उनसे सब धोखा लगे। पृथ्वी के धर्म नामे जब तो किसी चले पृथ्वी नाम में धर्म के नाम पर जितना कुछ चल रहा है भागवत कहे शिव भागवत क्या कह रहे हैं सब धोखा लगे। इसलिए पूर्व तात्पर्य ने कहा माया द्वारा प्रदत्त विभूति कोई प्रकार सब के धर्म के नाम में जो विभूतियां दे रहा है तो भौतिक जगत में जो डिग्री नौकरी रुपया जो दे रहा है सब इसके बाद क्या कहा जाए। सर्वलोक अष्टम सिद्धि यदि माया का विभूति है तो कोई एक नौकरी देना नौकरी प्राप्त करना सलाह मिलना ये तो इसके बाद बोलना जरूरत है नहीं। ये माया का छोटा विभूति है लेकिन बड़ा विभूति है। हम तो रुपया दे रहे हैं उनको नौकर बन के आदि का मेहनत पड़ेगा ये माया नहीं है। रुपया दे के हम एक बंदर को खाना दे रहे हैं बंदर देखा हमको कितना प्रेम करता है हमको जल्दी लगा के सारा जीवन रख के रखते हैं क्रिया मृत बंदर को जहाँ पे शरीर दिखाना है वो शरीर दिखाएगा और उससे देखे हमें कितना अच्छा हम उसको कितना खाना मिलता है हमेशा कितना प्रेम करते हैं तो खाने के लिए वो माया के कारण सुखी मानते हैं। इसलिए भौतिक जगत के स्तर सुख माया का विभूति है। उदाहरण वहां पर इस लोगों की अपेक्षा जीवन में कोई अधिक दीर्घ है वहां पे जीवन थोड़ा दीर्घ है। कहा जाता है कि चंद्रमा में जीवन अवधि ऐसे है कि हमारे क्षमा वहां के एक दिन के सर्वचलन में जीवन की अवधि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा के 12 घंटे बड़े से बड़े गणितज्ञों के लिए अकल्पनीय है। ये सभी भगवान की बहिरंग शक्ति के माया के कारण है। सुनाओ कितना अच्छा है हमारे 6 महीना चंद्रलोक में एक दिन और 6 महीने एक राधा कितना अच्छा है 6 महीने सोचा कितना मजा है यह ऐसे ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन यदि आपको स्वर्गलोक में जाके कोई जेल में लेगा कारागार में जाना पड़ेगा 6 महीने तो कितना दिन हो गया वहां के किसी को दांत टूट जाएगा बचपन से आज भी उनका शक्ति नहीं है कितना सालों में हजार हजार साल कोई जाके शर्त में अंदर आ जाएगा कितना दिन आना जीवन भोगना पड़ेगा उनको। तो इसका बड़ा जीवन प्राप्त करना क्या है? एक बार मार्कंडेय ऋषि मिकंदसूत भागवत में कहानी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया 7 कल्प जीवन निकाले, सबसे ज्यादा दीर्घ जीवन मेडिकल साइंस क्या कर रहे हैं, लाइफ स्पैन बढ़ रहे हैं। तो हम मार्कंडेय ऋषि भगवान से प्रार्थना किया और बल मिला 7 कल्प निकाले हो। तो 1 कल्प के बाद क्या आते हैं? प्रलय आते हैं। प्रलय में क्या होगा? पानी से कुछ नहीं है, पानी के बाहर तो बहुत कुछ था, पहले तो आग में जल जाएगा, वो भोगना पड़ेगा, फिर हवा होगा उसको रात बनने से, उसके बाद पानी आएगा, फिर विपत्ति। तो जितना बड़ा दिन है उतना बड़ा रात भी है, तो जितना दिन भोगना उतना दिन कष्ट होगा। आपको जो बोलेगा आपको जितना गुलाब जामुन खाएगा उतना आप पीटे ही पड़ेगा, आपको पीट में कितना गुलाब जामुन खाना चाहते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति है हम ज्यादा खा नहीं है, इसे कह नहीं सकते। तो मार्कंडेय ऋषि जब रात आया तो छाए को ला रहे हैं, पानी में तिर रहे हैं, और क्या उन्होंने अकेला आते है नहीं, तब वो केवल सोच रहे क्या गलती क्या गलती की जाता बार में आता है। अभी इतना मुश्किल जितना मेरा 1 कल्प दिन था तो 1 कल्प से रात चला गया, इतना तैरना पड़ेगा पानी में, और उसके बाद भी तीन चला है, ये तो एक बार है और अपन सेवा रहे। तो क्यों मैं इस तरह बार में इस तरह जिस जीवन कामना करना जीवन का लक्ष्य है। पावन गंगा की राधा कुंज मेरे जी की, इनके अतिरिक्त अन्य ऐश्वर्य भी है जिन्होंने जोगी अपनी जगत शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी भौतिक है, इन समस्त भौतिक भगवत की कामना नहीं करता, यदि भी ये इच्छा मात्र से उन्होंने सुलभ हो सकते अष्टसिद्धि भी भक्त नहीं चाहते। अभी अष्टसिद्धि किसी को पता है, कोई जो चाहता है वो करना चाहता, तो उनको भोग नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास इस तरह क्षमता है ये अभी ये देश के प्रेसिडेंट बन सकते, तो बनने की इच्छा नहीं होगा, इतना क्षमता रहेगा। और जो भोग करेंगे भोग का अर्थ में क्या होता है? भोगांति कष्ट है। तो अशुचि होने से क्या होता है? भोग करने का मौका ज्यादा मिलते हैं, और भोग करने से जितने भोग करेंगे उतना कष्ट मिलेगा, इसीलिए भक्तों को भी ये अशुचि में नहीं चाहते। लेकिन भक्तों के बाद ये सब आसान है, प्रभुपाद कभी इस तरह सिद्धि देखा नहीं, लेकिन प्रभुपाद जो किया है कौन कर सकते। आज सारी दुनिया में प्रभुपाद का महिमा किस तरह बात है, ये कोई सिद्धियों से कम नहीं है। भगवत कृपा से भक्त इच्छा मात्र से अश्चर्य सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविक भक्त को ये सब इच्छा नहीं। पुरलभ महाराज और हिरण्यकशिपु कितना क्षमता, लेकिन पुरलभ महाराज कुछ नहीं कर रहा कि पुरलभ महाराज इसका जरा क्या देखते हैं, पुरलभ महाराज की कितना शक्ति है। ये शक्ति कहां से है, केवल भगवान कृपा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि मनुष्य को न तो भौतिक ऐश्वर्य या क्षति की कामना करनी चाहिए, न भौतिक सौंदर्य का भोग करना चाहिए, न धन न जन न सौंदर्य। उसी तो भगवान की भक्त में लीन रहे, उसी तो भगवान की भक्ति में लीन रहने की कामना करनी चाहिए, भले ही उसे मुक्ति लाभ न हो और अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में रह रहा है। कोशा चल कर कहा है भगवान, मम जन्म जन्म निश्चय, न धनम न जन्म न सुंदरी न मुक्ति, नमस्कार मम जन्म जन्म निश्चय, जन्म जन्म आना चाहते इसका अर्थ किया है मुक्ति नहीं चाहते। तो भगवान का भक्त न धनम न जन्म न सुंदरी न मुक्ति क्या चाहते हैं, केवल अहैतिक भक्ति, ईश्वर अहैतिक भक्ति। किंतु वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में लगा रहते हैं उसी मुक्ति तो पहले से निश्चित है, जो भक्त है उसकी मुक्ति पहले से निश्चित है। मुक्ति स्वयं मुक्ति का निश्चय होता है, मुक्ति भक्त के घर के अंदर आने का परमिशन नहीं है। जिस तरह कुत्ते क्या करते हैं, मालिक के घर में दर्जे में बाहर में हमेशा बैठे, कब मालिक हमको सेवा के लिए आदेश करेंगे। तो मुक्ति देवी हाथ जोड़ करके समय की प्रतीक्षा करते दर्जा के बाहर में, कब मेरा प्रभु मुझको सेवा करने के मौका देगा। लेकिन भक्तों इस तरह मुक्ति को भी नहीं चाहते, भक्तगण स्वर्ग तथा वैकुंठ लोक के समस्त लाभों को भोग करते हैं। यह पर इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख भागवती भद्रा के रूप में हुआ है। वैकुंठ लोक में सब कुछ नित्य रूप से शांतिमय है, किंतु तो भी शुद्ध भक्त वहां नहीं जाना चाहते। शुद्ध भक्त स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, स्वर्ग में शुद्ध क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्वर्ग में जाने से क्या था भक्तों को भोग मिलने से कभी भगवान को भूल नहीं जाता, इसी के भक्त भगवान का कष्ट जाते हैं। जिस तरह उद्धव गीता में आप एकादश स्कंद में उद्धव को कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, लास्ट में दो उद्देश्य दिए हैं, एक है अवंती ब्राह्मण का और एक दिया लास्ट में ओइलोगी पूर्णरूपा का कहानी। यह जगह किसको क्या सिखाना चाहते हैं, ओइलो पहले अवंती ब्राह्मण उन्होंने मेटेरियली फ्रस्ट्रेट सब धन उनको धन चले गए और इसके कारण उनका जान भी चले गए, उनका सम्मान धन जन कुछ भी नहीं था, उनका आदमी छुपने के और मॉल मूत्र त्याग करते थे, खाने के अंदर मूत्र त्याग करते थे, पीछे करते थे। तो धन में समर में जब इतना फास्ट हो गया तो उनको किसी भक्ति का लिया है, जो नौ धर्म नौ धर्म इस तरह कंडीशन आने के बाद ही उनको ध्यान आने यहाँ भक्ति करना चाहिए। और लास्ट में उपदेश पूर्णरूप वैद्य का दर्जा दिया उन्होंने उर्वशी की कितना आशक्त, जब उर्वशी उनके भी तो आसक्त थी तब तब ध्यान नहीं था भक्ति करना पड़ेगा, लेकिन जब उर्वशी उनको त्याग करके चले गए न सुंदरी हो गया तब उनको भक्ति करा गया था। इसीलिए भक्ति करने के लिए तो जब नौ जन्म नौ जन्म नौ से ये होता है तो सोचना पड़ेगा कृष्ण का हमारे प्रति विशेष कृपा है। दस दिन ज्यादा रहने से नहीं सोचा भगवान आपको बहुत कृपा किया, बहुत धन दिया, बहुत सम्मान दिया, नहीं। ये पूर्वा तात्पर्य में कहा है ये माया का विभूति है, यदि ऐसे जाते हैं तो सोचना पड़ेगा माया का विभूति है। अपराधित के नाम करने से धर्म अर्थ काम लाभ होते हैं, तो धर्म अर्थ यदि ज्यादा मिल रहा है तो सोचना पड़ेगा हम अपराधित का नाम कर रहे हैं, शुद्ध नाम करने से कृष्ण प्रेम। तो वैकुंठ लोक में सब कुछ नित्य रूप से शांतिमय है, किंतु सभी शुद्ध भक्त को वह नहीं जानता, भक्त नहीं जानता, क्योंकि वो मिलने से हम भगवान को भूल जा सकते, ये रिस्क है। तो रिस्क कौन है, जब यह भौतिक जगत चले जाते तब तो भक्त आनंदित होते हैं, जिस तरह प्रभुपाद काल में लिखा, उन्होंने वृंदावन भजन में लिखा, जस्याम अनुग्रहामी हरिष्यत धनं शरणं कृपामयी एक कृपा बुझिलाम कोई। जो शास्त्र में भगवान कहा है ये मैं जब किसी को विशेष रूप में कृपा करना चाहता हूँ तो उनका सारे धन हर लेता हूँ, और जब इस तरह हर लेता हूँ तब एक निश्चय अवस्था देकर सब परिवार को जो त्याग दे रहे हैं तब उन लोग मेरा पद आना छोड़कर दूसरा के रास्ते पर खाली नहीं जाते। तो प्रभुपाद कहते हैं तो मेरा सारे धन जो चीज हो गया तो मेरा तो आनंदित होना चाहिए कृष्ण मुझे विशेष कृपा कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा प्रति कृष्ण का जो विशेष कृपा है लेकिन मेरा दुर्भाग्य में नहीं समझ पा रहा। कृपामय एक कृपा, कृपामय की विशेष कृपा है मेरा प्रति, बुझीला कोई मैं तो नहीं समझ रहा अभी तक। ये प्रभुपाद का दीनता है, प्रभुपाद तो समझ गए इसीलिए कह रहे हैं। फिर भी उसे यह लाभ प्राप्त होने होता है उसे अपने इस जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की सारी सुविधाएं भोगने के उपलब्ध हो जाती है। तो ये श्लोक में कहते हैं आप भगवान का भक्त लोग कबीर का मेरा भक्त लोग ये भौतिक ऐश्वर्य सर्वशुक्ति से शुरू करके ब्रह्म लोग तो कुछ नहीं मानते हैं, ये जो अष्ट सिद्धि नहीं चाहते हैं और यह सब भी मेरा धाम ही नहीं चाहते। तो कोई प्रश्न आ सकते हैं तो हम भक्तियों का हाँ व्यक्त बढ़े भगवत धाम जाना, ये कहेंगे कर भगवत धाम नहीं जाना चाहते क्या क्या हो। हाँ भक्त लोग पहले बार मांग सकते हैं हाँ भगवत धाम जाना भगवत धाम जाना, लेकिन ये भक्ति में आगे बढ़ गया भगवान जी भी बोलेगा आप तुम नरक में चला जाओ उद्धार करके आ जाओ, हम बोलेंगे नहीं भगवान आप तो प्रभुपाद इस कल में कहा सीख के आए भगवत धाम आना फिर नरक में भी जाएंगे, वो तो नहीं बोल सकते। भगवान जी भी बोलेगा नरक में जा सकते, आचार्य जी ने व्याख्या करते हैं यदि नरक में जाएंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। इस तरह अमेरिका कोई अमेरिका प्रेसिडेंट को उनका दूतावास कांगो में बनाएंगे, यदि वहां में हाई कमिश्नर बना के भेज देंगे तो कांगो के आदमी के तरह कष्ट होगा उनका पापा नहीं हो, यदि भी कांगो में और कोई हाई कमिश्नर बोले नहीं नहीं हमें तो कोई पनिशमेंट हो रहा है कांगो में क्यों भेज रहा है अमेरिका तो बहुत अच्छा है हम कांगो में जाएगा नहीं जितना गरीब देश है नहीं। और सरकार ज्यादा कृपा आशील होगा नहीं देखो मैं वो इतना गरीब देश में भेजा है कांगो में उनको ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, कोई तो जाना ही नहीं चाहता इतना एक बार घूमने से चलेंगे इसको ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए। यदि वो कांगो में गरीब देश ने दिया है लेकिन उत्तर आदमी के निकवा पे जाके अमेरिका क्या पानी पीते हैं, पानी तो कम नहीं देते हैं। तो इस तरह भक्तों को कोई भौतिक भगवान जाने जाने का इच्छा नहीं। कबीर देव ने और दूसरे जगह में कहा यह माता मेरे भक्तों की मेरे भी चार जगह मुक्ति देना चाहता हूँ, कोई समस्या लेना चाहते हैं लेकिन
किंतु इसके साथ सेवा में लेना कभी नहीं लेना चाहते हैं, बिना मौत सेवा में नहीं जाना। यदि वह जाके सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा तो भक्त बने नहीं, इस तरह मुक्ति मेरा जरूरत नहीं। तो पूर्व तात्पर्य में शिक्षा श्लोकम का 4 नंबर श्लोक रखा गया है, नौ धर्म नौ जन्म, ये भक्त का मनोभाव है। इसलिए हरिनाम जब चिंतामणि है तो चिंतामणि अर्थात जिसको जो प्रार्थना करते जो मन में कामना करते वो मिल जाते हैं। तो हरिनाम जप करने के समय यदि हमारे मन में कामना रहेगा धर्म जनम सुंदर तो आ जाएगा, तो क्या हमारे मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने कहा ये प्रार्थना हमेशा करना चाहिए, न धनम न जनम न। तो एक गान को भक्ति ठाकुर ने एक श्लोक को बहुत अच्छा गान रूप में प्रदान किया है, शिक्षा श्लोक का सारे श्लोक को, उपदेशानंद का सारे श्लोक को, मन शिक्षा का सारे श्लोक को एक एक गान रूप में प्रदान किया भक्ति ठाकुर। इस तरह भक्ति ठाकुर पूर्वतन आचार्य सत्य का निचर को बहुत श्लोकों को गान रूप में हमारे प्रदान किया था कि हम बहुत आसानी से समझ सकते। यह एक है गान, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, हे प्रभु आपका जो चरण कमल में मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन? आदमी दुनिया में आश्चर्य न पैदा निवेदन किया, प्रधानमंत्री के पास गया, हे प्रधानमंत्री मुझको इस तरह कृपा कीजिए मेरा धन जान सब नाश हो जाएगा, इस तरह निवेदन किया आज तक नहीं। बहुत ही लोगों ने इस तरह प्रार्थना सुना, प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री मेरा तो एक नौकरी मेरा मिल गया है लेकिन आप कृपा कीजिए मेरा सैलरी नहीं मिलेगा वहां पर, इस तरह कृपा किया है कोई इस तरह नहीं। लेकिन यहाँ भक्ति में ठाकुर इससे प्रार्थना है, भगवान आपका चरण मेरा एक निवेदन है, ना ही मांगी देह सुखो विद्या धन जो, मैं आपका चरण में प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा देह का सुख नहीं होना चाहिए, हाँ भगवान मेरा बीमारी हो गया तेरा इलाज कर देना। लेकिन यह प्रार्थना क्या करना है, ना देह सुख हमारे जब जब शरीर में बीमारी होते हैं तब भगवान के पास प्रार्थना किस तरह होते हैं, और शरीर में कोई बीमारी नहीं है तब शरीर में किस तरह प्रार्थना भाव किस तरह आते हैं, फरक होता है ना, कौन से रास्ते आते हैं? जब शरीर खराब होते तो प्रार्थना आते रहते हैं, तो भगवान के लिए अच्छा प्रार्थना करना चाहिए, तो किस तरह शरीर में से प्रार्थना आता है। तो एक व्यक्ति ने कहा था मैं आई एम दी ग्रेटेस्ट, बाद में उनका जो बीमारी हुआ वो क्या बोला था, आई एम दी ग्रेटेस्ट फूल। तो इतना भावना कब आया, जो बीमारी हुआ है तो भगवान के पास आपकी प्रार्थना मनोभाव कब आएगा जब इस तरह आएगा। इसीलिए तो जब बीमारी नहीं आएगा तो प्रार्थना किस आश्चर्य होंगे। यदि आज 12 बजे एक बहुत बड़ा फीस्ट है तो जीवन में कभी इस तरह फीस्ट खाया नहीं, नाम भी सुना नहीं इस तरह आए थे हमको, तो सुबह के किस तरह खाना खाएंगे हम। यदि 12 बजे इस तरह फीस्ट रहेगा तो सुबह किस तरह खाना खाएंगे, फास्टिंग रहेगा ना ताकि आप एंजॉय कर सकते। तो भगवान के पास प्रार्थना अच्छा कब आएगा, जब इस तरह समस्या होगा तो भगवान हम किसी बीमारी देगा ताकि हम आपको अच्छा प्रार्थना कर सकते, नहीं तो पेट भर रहेगा तो जितना अच्छा खाना देगा क्या, जिस जिसके पास डायबिटीज है उसको मीठी दिखने से अच्छा गर्म होता है क्या खाना देगा, तो रसन मलाई बोला था क्या है क्या खाना होगा क्या, क्योंकि उनके डायबिटीज है। तो हमारे पेट भरा रहेगा तो खाना हम अच्छा तो नहीं कर सकते। इसी तरह यदि दुख कष्ट नहीं हम लोग उपलब्धि कर भगवान की प्रार्थना नहीं आते, इसीलिए हमें इस तरह प्रार्थना आना चाहिए। तो इस तरह प्रार्थना आ जाए कोई बहुत है तो भगवान मुझको टीबी दीजिए, कैंसर दीजिए, सारा दिन में बिस्तर में पड़ा रहना चाहता हूँ ताकि आपको हम याद कर सकते, कौन बोलेगा इस तरह, इतने सुनने के बाद भी इस तरह बोलना संभव नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा वैष्णव इस तरह की है, ना जाना ना जाना, बस इस तरह बोलने की समस्या नहीं, क्योंकि महाप्रभु ने कहा उसे डिलीट करा रहा है, इसके की तकलीफ होगा महाप्रभु देखेंगे। नहीं मारी देह सुख, हे भगवान मैं देह सुख नहीं चाहता। इस तरह भगवान के जाता है हमको दिखाई दीजिए, लेकिन इस तरह जाते हैं हम तो ये भगवान मैं सुख के लिए आपके पास नहीं आया हूं, कब से इतना बना विद्या मैं विद्या नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, जन भी नहीं चाहता, ना ही मारी स्वर्ग छात्र सुख भी नहीं चाहता, और मोक्ष नहीं मारी मोक्ष भी नहीं मारी, ना कोई प्रार्थना कोनो विभूति लागी, कोई विभूति के लिए हे भगवान मुझे आपके पास आया, कोई प्रधानमंत्री किसी के पास आते हैं तो प्रधानमंत्री क्या सोचते हो सकते किस कुछ करने के लिए मेरे पास आया, जो भगवान के पास आते हैं तो भगवान सोचेंगे हाँ कुछ मांगने के लिए आया, लेकिन पहले आके बोलना चाहिए भगवान मैं जो आया हूँ ये देवसुख विद्या धन जन स्वर्गसुख मोक्ष यह तो विभूति के लिए मैं आया नहीं आपके पास, निज कर्म गुणों दोष जे जे जन्म पाए, मेरा गुण का कारण मेरा दोष का कारण और गुण का कारण मेरा जो जो जन्म होता है सूरज जन्म हो सकते देवता के जन्म हो सकते जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण का कोई भी जन्म सूरज जन्म हो सकते देवता के जन्म हो सकते, लेकिन एक प्रार्थना है ये एक प्रार्थना करने के लिए आया, कोई भी जन्म हो सकते कोई भी समस्या हो सकते लेकिन आपका नाम गुणों के स्तर करना चाहता हूं। ये शिक्षा स्टेकम कहां से शुरू हुआ है, एक नंबर श्लोक इसको परम विजय से स्थिति से शांति करना, महापुरुष के शिक्षा देना चाहते हैं केवल भगवान का नाम का परम विजय, तो यह करने के लिए वो श्लोक चतुर्थी नंबर श्लोक में आया है, मैं धन जवान कुछ नहीं चाहता और भी भक्ति चाहता हूँ, और भी भक्ति किया है भक्ति मेरा ठाकुर दिया परिष्कार कर दिया है, और भी भक्ति किया है नाम गुण गाना चाहता आप कुछ नहीं चाहते, चैतन्य महापुरुष श्लोक ने कहा ममो जन्मनि जन्मनि शरीर भवतां भक्ति भारती भक्ति, किस तरह भक्ति होना चाहिए भक्ति मेरा ठाकुर यह कहा जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाय, जन्म जन्मांतर कोई भी जन्म में कि मेरा गुण मेरा पुण्य मेरा पाप के कारण उच्च जन्म निम्न जन्म हो सकते, लेकिन वो मेरा देखने का विषय नहीं है, मैं केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं मैं केवल आपका नाम गुण की यही मात्र आशा मामो तुम्हारे चरण में, आपका चरण में मेरा एक ही आशा है, अहंत की भक्ति विदे जागे अनुक्षण, लेकिन इस तरह भक्ति मैं कोई भी नहीं चाहता हूँ, आप जिन का कैलकुलेट करना चाहते हैं गिनना करना चाहते हैं तुमको तो इतना चीज है इनमें से ज्यादा नहीं दे सकते, तो इससे कैलकुलेशन में होगा नहीं, आप उसकी कृपा करना चाहिए और किस तरह, और एक चीज भगवान तो देंगे लेकिन हमारे हृदय में जो आकांक्षा नहीं रहेगा तो हम उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, किस तरह भक्ति कहते हैं विषय के प्रति आशय आवाज, विषय के प्रति भौतिक जगत के प्रति जिस तरह आसक्ति है जिस तरह धन कमाने के लिए आसक्ति किसी को सिखाना पड़ते हैं सिखाना पड़ता है जो धन कमाओ, कोई जगह रास्ता में सोना पड़ रहा है वो किसी को सिखाना पड़ेगा, अरे रास्ता में यदि कोई सोना पड़ा जाएगा लेके आना किसी बोलना पड़ेगा लेके आए घर से मिल जाएगा, सीखना जरूरत नहीं तो ऑटोमेटिक उनके प्रति आ सकते हैं, कामना काम बासना पशु पक्षी को सीखाना नहीं पड़ते ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो विषय के प्रति जो आसक्ति है स्वाभाविक है इसको किसी को सीखाना नहीं पड़ता है, जैसे कि बचपन से जो जन्म के पास किस तरह खाना पड़ेगा पीना पड़ेगा किसी सीखाया, एक पशु का बच्चा जब पशु बच्चा जन्म करने के बाद उसको माँ माँ का स्तर करना चाहते हैं कौन सी कह रहा, ये भौतिक जगत में जो कुछ है आनिद्रा भय मैथुन इसके बोलते हमारे स्वाभाविक हमारे ज्ञान है, इसके ऊपर सबको पीएचडी कर चुके पायलट से, इसको दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके लिए नया का शिक्षा लेना पड़ेगा, सब दूसरा को ट्रेनिंग दे सकते दूसरा। तो विषय के बोलते जो हमारी प्रीति है स्वाभाविक है, तो सही मत प्रीति हो चरण उत्तम प्रार्थना की, एक युवक एक युवती, युवती युवक के प्रति जिस तरह स्वाभाविक रूप में आसक्त होते हैं, तो उसी तरह हमारे कृष्ण के प्रति आसक्ति से स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। भगवान के पास इस तरह प्रार्थना करें कि विषय के प्रति जिस तरह प्रीति है, ये भगवान आपका चरण में पड़ा उस तरह प्रीति आ जाए। तो वो प्रीति कितना टाइम रहना चाहिए हमारे प्रति, विपदे संपदे तहा ठाकुर समभाव, आज मिलकर प्रधानमंत्री बना देंगे उसी टाइम, मतलब नहीं अभी तो सुनवाला करने का टाइम नहीं है, उसी टाइम ही सुनवाला विपदे संपदे, विपद के समय सुख के समय, ये हम भगवान के प्रति ये प्रेम समभाव में रहना चाहिए। बीमारी होने से भूल जाते हैं, अच्छा पोजीशन मिलने से भूल जाते हैं, ये भगवान मेरा इस तरह स्थिति नहीं होना चाहिए। विपद में संपद में आपका प्रति अहित की भक्ति विषय के प्रति जिस तरह संभव है, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और केवल इतना ही नहीं, दिन दिन वो जो बढ़ते जाते जाएगा ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभाव, क्यों उसके बारे में दिन दिन कैसे बढ़ेंगे, नाम के प्रभाव में दिन दिन बढ़ते रहेंगे। आप देखो हम नौजवान नौजवान कितना बार पढ़ा है, इस तरह उपलब्धि जीवन में आया कभी, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर उस श्लोक को कितना अच्छा रखा गया है, नौजवान नौजवान में पढ़ने क्या समझ सकते हैं, नासिक ऐसा चीज नहीं जैसे भक्ति चाहते, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर कितना बढ़िया ढंग से रखा गया है, इस तरह धीरे धीरे नाम का प्रभाव में कैसे बांधना चाहिए। पशु पक्षी हुए था कि स्वर्ग व निर्दय, मैं पशु पक्षियों का स्वर्ग में रहूंगा कि नरक में रहूंगा, तब भक्ति रहू भक्ति दिनो हृदय, आपका भक्ति हमेशा भक्ति में ठाकुर करें उनके हृदय में हमेशा ही रहे, इस तरह में प्रार्थना करना। हरे कृष्ण, अभी टाइम हो वाला है, सुबह कीर्तन करेंगे जाएंगे, लेकिन टाइम खत्म है, टाइम है तो
प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे
Prabhu Tara Prabhu Tara। Thank you. Thank you.